पांचवा चैप्टर टहनवी की इतिहास मीमांसा। टहनवी का ग्रंथ ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री एक प्रकार से स्पेंगलर की कृति का रूपांतरण मात्र है। स्पेंगलर ने अपनी कृति युवावस्था में लिखी थी, जबकि टहनवी ने प्रौढ़ावस्था में। उसने स्पेंगलर की 8 संस्कृतियों के स्थान पर संस्कृति की 23 इकाइयां निश्चित की। प्रथम विश्व युद्ध ने इतिहास में प्रगति के सिद्धांत को समाप्त कर दिया। टहनवी ने अपना कार्य निराशावादी आधार से प्रारंभ किया था। उसकी संस्कृतियों के विकास का क्रम प्राचीन से आधुनिक की ओर अग्रसर होता है। जैसा कि सुविदित है कि उसके ग्रंथ के जो भाग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लिखे गए, उनमें धर्म बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके अनुसार जैसे जैसे सभ्यताओं का पतन होता है, नए धर्मों का उदय होता है। पश्चिम का पतन टहनवी के सम्मुख उत्पन्न समस्याओं में प्रमुख समस्या थी। टहनवी का अध्ययन अनुभव पर आश्रित था। उसने अपने लेखन में निर्भीक रूप से अपने सामाजिक विज्ञान की अनुसंधान पद्धतियों का प्रयोग किया है। उसने मानव संबंधों जैसे विस्तृत विषय पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसके लिए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जब टहनवी ने प्रथम बार स्पेंगलर को पढ़ा, तब उस पर प्रतिक्रिया हुई, मुझे आश्चर्य हुआ कि कहीं स्पेंगलर ने मेरे दिमाग में शोध संबंधी समस्याओं व समाधानों के एक स्वरूप ग्रहण करने के पूर्व ही मेरे समस्त शोध को ठुकरा तो नहीं दिया। टहनवी का एक आधारभूत विचार यह था कि ऐतिहासिक अध्ययन की सबसे छोटी सुबोधगम इकाई संपूर्ण समाज होता है, न कि एक पक्षीय रूप से निर्धारित उनके कुछ अंश। जैसे आधुनिक युग के राष्ट्र राज अथवा यूनानी रोमन युग के नगर राज। टहनवी के कार्य का एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि सभी सभ्यताओं का इतिहास कुछ निश्चित संदर्भों में समानांतर और समसामयिक होता है। लेकिन उसका कहना है कि जब मैंने सभ्यताओं की उत्पत्ति से संबंधित अपने प्रश्न के उत्तर स्वरूप स्पेंगलर की पुस्तक को देखा, तो पाया कि स्पेंगलर बिना अपनी स्थापनाओं को प्रकाशित किए हुए नितांत मताग्रही और नियतिवादी था। जबकि जर्मन प्रागनुभव पद्धति निरर्थक सिद्ध हुई। हमें यह देखना होगा कि अंग्रेज अनुभववाद से क्या उपलब्ध होता है, लेकिन हमें टहनवी के अनुभववाद से संबंधित दावे को सर्वथा सत्य रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। अनुभववाद दर्शन के बजाय एक अवस्थान भंगी मात्र है। अधिक से अधिक यह शोध की एक पद्धति है। अंग्रेज दार्शनिक स्वभावतः बुद्धि की तुलना में अनुभववाद का विरोध करते हैं। बुद्धिवाद की तुलना वे हीगलवाद से करते हैं। टहनवी महसूस करता है कि वह हीगलवादी नहीं है। वह यह भी सोचता है कि वह अपने आप को ईमानदारी से अनुभववादी की संज्ञा प्रदान कर सकता है। टहनवी ने सभ्यताओं की समसामयिकता तब समझी जब 1614 में वह अपने विद्यार्थियों को थियुसिडाइडस पढ़ा रहा था। उल्लेखनीय है कि थियुसिडाइडस ने हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार 441 ईसा पूर्व लिखी थी। टहनवी इस तिथि को हेलेनिक समाज के विघटन की तिथि मानता है। उसने लिखा है, वह अनुभव जो हम आधुनिक विश्व में अर्जित कर रहे थे, 1914 की घटनाओं के रूप में उन्हें थियुसिडाइडस ने अपने समय में अनुभूत किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि थियुसिडाइडस इससे पहले इस धरातल पर हो चुका है था। वह और उसकी पीढ़ी उन ऐतिहासिक अनुभवों के दृष्टि से मुझसे व मेरी पीढ़ी दोनों से आगे जिन तक हम पहुँचे, वस्तुतः उसका वर्तमान मेरा भविष्य रहा था। इस स्थिति से कालक्रम निर्धारण की उस अवस्था को निरर्थक ठहरा दिया गया जिसके अंतर्गत मेरा युग आधुनिक और थियुसिडाइडस का युग प्राचीन था। कालक्रम कुछ भी कहे, दार्शनिक स्तर पर थियुसिडाइडस का युग और मेरा युग समकालीन सिद्ध हो चुके हैं। यदि यूनानी रोमन और पश्चिमी सभ्यताओं के बीच इस प्रकार का सामयिक संबंध हो सकता था, तो शेष अन्य सभ्यताओं के बीच इस प्रकार का संबंध क्यों नहीं स्थापित हो सकता। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है, टाइनबी यूनानी रोमन सभ्यता के इतिहास को सभ्यताओं के तुलनात्मक अध्ययन के प्रतिमान के रूप में ग्रहण करता है। यद्यपि एक पृथक कोटि के रूप में सभ्यताओं का उदय आज से 6000 वर्ष पूर्व हुआ था, खगोलीय कालक्रम की दृष्टि से सभी सभ्यताएं समसामयिक हैं। इस तुलनात्मक पद्धति की सामान्य आलोचनाओं में से एक आलोचना यह की जाती है कि यद्यपि सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन सिद्धांत में वे तो संभव हैं, परंतु सामग्री की असाध्यता के कारण यह व्यवहार में असंभव है। सभ्यताओं के इतिहास मात्र तथ्यों घटनाओं की कड़ी हैं और प्रत्येक ऐतिहासिक तथ्य अविभाज्य रूप से विलक्षण है। अतः वह दूसरे तथ्य से निश्चित रूप से अतुलनीय है। इस आलोचना का टाइनबी ने उत्तर दिया है। उसका कहना है कि यद्यपि कुछ स्थितियों में प्रत्येक घटना विलक्षण और अतुलनीय है, लेकिन वह इस स्थिति में भी किसी वर्ग विशेष में आ सकती है। कोई भी दो जीवित शरीर रचनाएं तत्सम नहीं हैं, जैसे जानवर और पौधे, लेकिन इसके बावजूद प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा मानव जाति विज्ञान की वैधता समाप्त नहीं होती। अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए टाइनबी अरस्तु के कृतित्व का सहारा लेता है। अरस्तु के अनुसार मानव जीवन की घटनाओं और अपने विचार बिंदुओं को समझने की तीन पद्धतियां हैं। पहला, तथ्यों का सुनिश्चितकरण और उनका संग्रह। दूसरा, तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा कुछ सामान्य नियमों की व्याख्या और तीसरा, कल्पना के रूप में तथ्यों की कलात्मक पुनर्रचना। समानता यह स्वीकार किया जाता है कि तथ्यों का सुनिश्चितकरण और उनका संग्रह इतिहासज्ञों की कला है और इस क्षेत्र की घटनाएं सभ्यताओं की सामाजिक घटनाएं हैं। सामान्य नियमों का निर्धारण विज्ञान की तकनीक है और मानव जीवन के अध्ययन में विज्ञान मानव शास्त्र है तथा इस क्षेत्र में अध्ययन की जाने वाली घटनाएं आदि समाजों की सामाजिक घटनाएं हैं और अंत में यह कि कल्पना विभिन्न व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। लेकिन अध्ययन के तीन विभागों की तकनीकों के बीच यह अंतर उतना सुस्पष्ट नहीं है जितना हम मानकर चलते हैं। उदाहरण के लिए इतिहास का उद्देश्य मानव जीवन के समस्त तथ्यों का संग्रह नहीं और न ही मात्र तथ्यों का संग्रह ही उसका उद्देश्य है। इतिहास आदि समाजों से संबंधित सामाजिक जीवन के तथ्य मानव शास्त्र को सौंप देता है। यह कल्पना से भी मुक्ति नहीं पा सकता। इसके अतिरिक्त इतिहास तथ्य संग्रह के साथ साथ विधि का भी प्रयोग करता है। यही बात विज्ञान और कल्पना के ऊपर भी लागू होती है। वे सभी विषय जो अब विज्ञान हैं, एक बार तथ्य संग्रह की प्रारंभिक अवस्था से होकर गुजर चुके हैं। उपन्यास और नाटक पूर्णतः कल्पना का प्रतिनिधित्व नहीं करते, उनके पृष्ठभूमि में प्रामाणिक सामाजिक तथ्य होते हैं। कल्पना इस पृष्ठभूमि को पूर्व प्राप्त मानकर ही चलती है। इसके बावजूद अरस्तु का वर्गीकरण समानतः वैध है। यह उल्लेखनीय है कि ये तकनीक विभिन्न प्रकार के तथ्यों की उपयुक्तता के संदर्भ में परस्पर भिन्न है। तथ्यों का सुनिश्चितीकरण और संग्रह उसी स्थिति में किया जा सकता है जब वे संख्या के दृष्टि से काफी कम हों। नियमों का निर्धारण उसी स्थिति में आवश्यक और संभव है जबकि तथ्य इतने बहुसंख्यक हों कि उनका संग्रह किया जा सके, और कल्पना ही वह एकमात्र तकनीक है जो प्रयोग में लाने योग्य है और इस स्थिति में लाया जा सकता है जिनमें तथ्य बहुसंख्यक हो। सभ्यताओं में सामाजिक जीवन के अध्ययन से संबंधित तथा अंतस्थ रूप से विलक्षण नहीं है, बल्कि वे मात्र अस्थायी रूप से और संयोग से विलक्षण हैं। इस स्थिति में तथ्यों की उस मात्रा तक वृद्धि संभव हो सकती है जहां एक तुलनात्मक पद्धति द्वारा नियमों का निर्माण होता है। अतः प्रोफेसर टाइनबी का कहना है कि अब तक सभ्यताओं के अध्ययन में तथ्यों की खोज से संबंधित तकनीक का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। प्रोफेसर टाइनबी का विश्वास है कि सभ्यताओं के अध्ययन में यदि सामग्री इस प्रकार अनिश्चित रूप से वृद्धि होती रही तो नियम निर्धारण तकनीक का प्रयोग तो दुष्कर होगा ही, बल्कि कल्पना के अतिरिक्त अन्य किसी तकनीक का प्रयोग भी असंभव हो जाएगा। अब हमें टाइनबी की सभ्यताओं की जीवन संबंधी व्यवस्था पर एक दृष्टि डालनी चाहिए। सभ्यताओं की उत्पत्ति और विकास के संबंध में उसका विचार है कि वे भौतिक अथवा भौगोलिक परिवेश का परिणाम नहीं है, वे वास्तव में एक अपरिभाष्य तत्व का परिमाण है जो ऊपरी तौर से मनोवैज्ञानिक प्रकार का है। अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए टाहिनबी पुराण का आश्रय लेता है। प्लेटो ने मुझे सिखाया कि विज्ञान और मिथक दोनों का एक साथ प्रयोग अवांछनीय नहीं है। हमें एक क्षण के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रति अपनी आँख मूंद लेना चाहिए ताकि हम पुराणों की भाषा सुन सकें। सभ्यताओं की उत्पत्ति का कारण कोई एक नहीं बल्कि अनेक हैं। यह अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं, एक संबंध है। सृष्टि दो अलौकिक व्यक्तित्वों के मिलन, उनकी अंतःक्रियाओं का परिणाम है। हर बार यह योजना एक पूर्ण भिन्न राज्य के रूप में फलीभूत होती है। यह यांग से होकर क्यों गुजरती है? किसी बाह्य प्रेरणा या शक्ति के वशीभूत होकर। एडम और ईव की निश्चित दुनिया में शैतान का प्रवेश, फाउस्ट की दुनिया में मैकिस्टो का प्रवेश, जो कि ज्ञान के क्षेत्र में पूर्ण है, या पौराणिक भाषा में दैवी सृष्टि में शैतान की घुसपैठ, फाउस्ट का न्यू स्टेटमेंट के अंतर्गत शैतान की विजय का निश्चित रूप से निषेध है। ज़्यादा से ज़्यादा वह ईश्वर का उद्देश्य पूरा करता है, लेकिन यह कहना है कि शैतान का प्रलोभन ईश्वर की सृष्टि की पुनर्रचना का अवसर देता है। इस तरह यिन से यांग तक का दौर पूरा होता है। इस नाटक का सारांश व्यक्ति की अग्नि परीक्षा है। स्वर्ग में तो मात्र इसकी तैयारी ही होती है, अतः अगला चरण इस संकट का समाधान होता है जब व्यक्ति सजग रूप से ईश्वर की इच्छा का माध्यम बन जाता है। यह वश्यता एक और ब्रह्मांडीय परिवर्तन लाती है और परिणाम फिर एक इन राज के रूप में प्रकट होता है। टाइनबी को पुराणीकरण से दूर रखते हुए या उसकी भाषा में मिथकों की प्रतिमावली को पुनर् अनुदित करते हुए यह कहा जा सकता है कि उत्पत्ति का कारण एक अंतःक्रिया है। चुनौती, विरोध और अनुक्रिया के इस विचार को लागू करने के लिए व्यक्ति का उसके वातावरण के संदर्भ में पुनः अध्ययन किया जाता है। जाति और वातावरण को एक नए संदर्भ में समझा जा सकता है, क्योंकि एक अज्ञात तत्व ऐसा होता है जो सर्वाधिक सचेत व्यक्तियों की अवज्ञा करता है। तत्पश्चात हमें विभिन्न सभ्यताओं की उत्पत्ति के विषय में पता लगता है। उदाहरण के लिए मिस्र की सभ्यता का जन्म अफ्रीकी एशियाई मरुस्थल शुष्कन की चुनौती के फलस्वरूप विकसित हुई थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि अनुपयुक्त भौगोलिक स्थितियाँ अधिक समक्ष रूप से उत्तरदायी होती हैं। सौंदर्य पूर्ण दुस्साध्य होता है। यह स्थिति सभ्यताओं के लिए भी विरोधी है। कठिन परिस्थितियों कई तरह से लाभकारी सिद्ध होती है। उदाहरण के लिए पीली नदी नौ संचालन के लिए दुस्साध्य है और सामान्यतः यांगत्सी से अधिक कठिनाइयां पैदा करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पीली नदी के मुहाने पर भी सिक्किन सभ्यता फली फूली। नए धरातल भी प्रेरणा देते हैं जिससे आप्रवासियों में सृजनात्मक प्रतिभा दृष्टिगत होती है। उदाहरणार्थ अमेरिका यूरोप के विभिन्न लोगों के एक साथ बस जाने के बाद समृद्ध हो गया। इसके अतिरिक्त यह प्रेरणा मानवीय स्वरूपों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दंडों, दबावों, युद्धों आदि में भी परिणत हो सकती है, जिसके फलस्वरूप गुलामी, जातीय भेदभाव, दमन और निर्वासन अस्तित्व पा सकते हैं। फारस के विरुद्ध युद्ध में हेलामिस की लड़ाई तक पराजय उन्मुख था, लेकिन दबाव का फल यहाँ हासिल हुआ और सेलामिस में फारसी लोग पूर्णतः नष्ट हो गए। इसके बावजूद विरोध चुनौती और अनुक्रिया के इस नियम की कुछ अनिवार्य शर्तें हैं। जितनी अधिक चुनौतियां होगी उसी अनुपात में प्रेरणा होगी। सर्वाधिक प्रेरणास्पद चुनौती अभाव और उसके अधिक के साधन के रूप में प्राप्त होता है। परंतु एक निश्चित अनुपात के बाद चुनौतियों के अनुपात में वृद्धि हो और उसके साथ उसी अनुपात में अनुक्रिया का अनुपात न बढ़े तो हमें ज्ञात होगा कि चुनौती विरोध और अनुक्रिया की अंतःक्रिया हास्यमान उपलब्धि के नियम से संचालित हैं। अतः टायनबी का यह निष्कर्ष है कि कठिनता का एक निर्धारित अनुपात है जिसके अंतर्गत प्रेरणा चरम बिंदु पर होती है। वह इस स्थिति को चुनौती और विरोध की सर्वाधिक अनुपात की स्थिति न मानकर इष्टतम अनुपात की स्थिति मानता है। किसी सभ्यता का विकास कैसे होता है, इस विषय में टायनबी की अपनी मान्यता है। सभ्यता का विकास तभी होता है जब व्यक्ति, अल्पसंख्यक वर्ग या सामाजिक वर्ग निरंतर आने वाली चुनौतियों का सामना करते हैं और यह क्रम निरंतर चलता रहता है, अर्थात चुनौतियों का जवाब मिलता है जिसकी प्रक्रिया के फलस्वरूप नई चुनौतियों का जन्म होता है और पुनः तत्संबंधी सामाजिक वर्ग उसका उत्तर देता है। इस क्रम की निरंतरता में सभ्यता का विकास निहित है। लेकिन सभ्यता के विकास और लक्षण क्या हैं? टायनबी इसको बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। सैनिक या सामाजिक स्थिति का विकास सभ्यता के विकास का लक्षण नहीं है, इसके विपरीत यह सभ्यता के पतन का संकेतक है। इसी प्रकार सभ्यता का भौगोलिक विस्तार या वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां सभ्यता के विकास के द्योतक नहीं हैं। यद्यपि साधारणतः भौतिक विकास सभ्यता का लक्षण माना जाता है, लेकिन टायनबी ने भौतिक परिवेश को नगण्य मानकर सभ्यता के संदर्भ में उसे महत्व नहीं दिया। उसके विचार से सभ्यता का विकास आंतरिक प्रक्रिया है। सभ्यता के विकास के लिए आत्मनिश्चय आवश्यक लक्षण है। सभ्यता का अपना पृथक परिवेश बनता है जिसमें उसकी स्वयं की चुनौतियां उत्पन्न होती है, अर्थात बाह्य सृष्टि से आंतरिक सृष्टि में क्रिया होती है। सभ्यता के विकास का नेतृत्व हमेशा रहस्यवादियों ने किया। रहस्यवादियों को अपने अनुयायी बनाने के लिए अपनी अंतः दृष्टि की छाप पूरे समाज पर लगानी होती है, लेकिन इसका संपादन कैसे किया जाए यह एक समस्या रही है, क्योंकि यदि रहस्यवादी इस प्रकार का परिवर्तन करना चाहें तो जन समान रहस्यवादियों के ज्ञान का उस प्रकार अनुभव नहीं कर सकता जिस प्रकार स्वयं उन्होंने किया है। लेकिन यह रचनात्मक प्रक्रिया असमंजसग्रस्त है, क्योंकि एक और रहस्यवादी अपने प्रयास में असफल होता है तो स्वतः ही वह अपने कार्य क्षेत्र से बाहर हो जाएगा और उसे सफलता मिली तो वह जन सामान्य का जीवन तब तक दुष्कर बना देगा जब तक वह स्वयं अपने प्रयत्न के द्वारा नए सामाजिक वातावरण को न समझे और सामान्य जन की जड़ता के कारण इस प्रकार की आशा व्यर्थ है। इसीलिए इस सभ्यता के केवल दो ही निदान संभव है, एक कि मेधावी परिवर्तन के लिए सतत प्रयत्न करता रहे, या दूसरी ओर रहस्यवाद के द्वारा समाज को परिवर्तित करने का प्रयत्न किया जाए। इनमें दूसरा निदान जिसमें एक एक व्यक्ति को परिवर्तित किया जाता है निसंदेह आदर्श है, लेकिन ऐसे आदर्श से समाज की स्थापना संभव नहीं है। और यदि मेधावी परिवर्तन के लिए सतत प्रयत्न करता रहे तो सामान्य जन के द्वारा उसका अनुकरण सभ्यता के लिए उपादेय नहीं होगा, क्योंकि अनुकरण के द्वारा जन सामान्य को जो भी विचार सामग्री, संपत्ति या कोई विशिष्ट दृष्टिकोण प्राप्त होगा वह उनकी अपनी उपलब्धि न होकर मेधावी के प्रयासों की देन होगी। वास्तव में अनुकरण का मार्ग सरल मार्ग है और ध्येय को पाने के लिए आवश्यक भी है, लेकिन मूलतः संदिग्ध युक्ति है जो सभ्यता को विघटित होने की स्थिति तक ले जाती है। सभ्यता का विघटन क्यों होता है, इस विषय में विचारकों में मतैक नहीं है। भारतीय परंपरा में जिस प्रकार युगों का प्रारंभ और समाप्ति होती है, उसी प्रकार सभ्यता का जीवन उस युग का छोटा काल है, जबकि स्पेंगलर के अनुसार सभ्यता का विकास जैवकीय सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए सभ्यता का विघटन अवश्य संभावी है। एक मत के अनुसार प्रजातिगण वर्ण संकर संस्कार सभ्यता के विघटन का मूल कारण है, लेकिन टायनबी के अनुसार सभ्यता से प्रजातियों का कोई संबंध नहीं है। सभ्यता के विघटन के लिए एक समान धारणा यह भी रही है कि सभ्यताओं का उत्थान और पतन का मार्ग चक्रात्मक है, अर्थात सभ्यता का उत्थान हुआ है तो विघटन और पतन निश्चित है। लेकिन इस संबंध में टायनबी का अपना मत है। उसके अनुसार सभ्यताओं का पतन के आधार पर भावी सभ्यताओं की कुंडली ही बनाई जा सकती है। इस प्रकार सभ्यता का विघटन न तो भौगोलिक क्षेत्र में सीमित होने से होता है और न ही इसका कारण मानव जन्म या नैसर्गिक विपत्तियां हैं। वस्तुतः सभ्यता के लिए विघटन का कारण उसका आत्मघात है। जब व्यक्तियों अथवा अल्पसंख्यकों में क्रियात्मक शक्ति का ह्रास होता है तब सभ्यता का विघटन होता है। विघटन होने के बाद मेधावी के अनुकरण का प्रश्न ही नहीं रहता है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि पहले समाज में क्रियात्मक शक्ति का ह्रास हुआ और मेधावियों ने शक्ति के द्वारा परिवर्तन लाना चाहा, लेकिन सामान्य जन जड़ होने के कारण वैचारिक परिवर्तन संभव नहीं हुआ, जिसका परिणाम था संघभेद या सभ्यता का विघटन। अर्थात व्यक्तियों में क्रियात्मक शक्ति का ह्रास ही टायनबी के विचार में सभ्यता के विघटन का मूल कारण है, जिसे उसने आत्मघात की संज्ञा दी है। सभ्यता के विघटन के समय समाज तीन भागों में बट जाता है, एक सत्ताधारी अल्पसंख्यक, दूसरा आंतरिक प्रोलेटेरियत और तीसरा वाह प्रोलेटेरियत। यहाँ यह स्मरणीय है कि जैसा स्पिंगलर का मत था कि विघटन के बाद सभ्यता समाप्त हो जाती है वहाँ टायनबी के अनुसार समाज के उपरोक्त तीनों भाग विघटन के पश्चात भी उपलब्धि करते हैं। विघटन के समय में यह तीनों भाग निस्सारता की स्थिति में नहीं होते हैं, बल्कि तीनों को ही महत्वपूर्ण काम करना होता है। आंतरिक प्रोलेटेरियत बाहर से प्रेरणा लेकर विश्व जनीन धर्म की सृष्टि करता है, जबकि सत्ताधारी अल्पसंख्यक वर्ग विघटन की गति को रोकने के लिए विश्व साम्राज्य का निर्माण करता है तथा बाह प्रोलेटेरियत विघटन को पूरा करने के लिए सभ्यता को आखिरी धक्का देकर पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास करता है। लेकिन वास्तव में बाह प्रोलेटेरियत को कभी भी पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हुई। जब भी सभ्यता का विघटन हुआ तो उसका कारण आंतरिक शक्तियां थी। प्रारंभ में टायनबी ने सभ्यता को अध्ययन की इकाई माना था, लेकिन सभ्यता के पतन के बाद आंतरिक प्रोलेटेरियत ने बाह प्रेरणा लेकर विश्व जनीन धर्म की सृष्टि की। अर्थात अब टायनबी के विचार से अध्ययन का क्षेत्र परिवर्तित हुआ। सभ्यता ने न केवल धर्म की दास्ता ग्रहण की, बल्कि उसकी परिसमाप्ति एक विश्व जनीन धर्म के रूप में परिवर्तित हुई। इस नए परिवर्तन की मूल प्रेरणा बाहरी होते हुए भी उसकी उपलब्धि सभ्यता के अपने आंतरिक प्रोलेटेरियत के द्वारा हुई। अध्ययन की इकाइयों में परिवर्तन टायनबी का अपना व्यक्तिगत मामला है। उसने अनुभव किया कि सभ्यता के पतन के द्वारा मनुष्य जो दुख अनुभव करते हैं उसी से प्रगति होती है। दूसरे शब्दों में कठिनाइयां ही आगे बढ़ना सिखाती है। टायनबी ने सभ्यता और धर्म को एक रथ के रूप में देखा, जिसमें पहियों की गति सभ्यता की गति है और रथ धर्म का स्वरूप है। जैसे प्रकट रूप में पहिए घूमते हैं और रथ आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही समय की गति के साथ साथ सभ्यताओं का उत्थान और पतन होता है। पहिए घूमते जाते हैं लेकिन धर्म का रथ आगे बढ़ते जाता है। इससे स्पष्ट है कि टायनबी ने यहाँ पर विको के समान इतिहास दर्शन के सर्पिल सिद्धांत स्पारल थ्योरी का प्रतिपादन किया है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि टायनबी प्रारंभ में सभी सभ्यताओं को दार्शनिक रूप से एक मानता था और अब देवशास्त्र के आधार पर महान धर्मों को एक मानता है। टायनबी के अनुसार चार महान धर्म हैं, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, महायान बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म। इससे स्पष्ट है कि टायनबी का इतिहास दर्शन सापेक्षतावादी है। इस संदर्भ में पश्चिमी सभ्यता का भविष्य क्या होगा, पुरानी मृत सभ्यताओं के आधार पर इस सभ्यता के विषय में भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। क्या इस सभ्यता का पतन होगा, इसके उत्तर में स्पेंगलर के विपरीत टाइनबी आशा करता है कि इस सभ्यता में क्रियात्मक शक्ति का ह्रास नहीं होगा और इस बात की पूरी संभावना हो सकती है कि इसे निरंतर चुनौतियां मिले और उनका उत्तर भी मिलता जाए। लेकिन यहाँ पर यह स्मरणीय है कि पहले टाइनबी का यह विचार था कि इतिहास कुछ साधारण नियमों से आबद्ध है, लेकिन अब पाश्चात्य सभ्यता के संदर्भ में वह अपने पुराने विचार को मानने के लिए तैयार नहीं है और आशा करता है कि यह सभ्यता पतोन्मुख नहीं होगी और आशा करता है कि यह सभ्यता पतोन्मुख नहीं होगी समाप्त।